दानियल की पुस्तक संख्या 49।
सत्यों का अनावरण, मध्य रात्रि की पुकार, इस्लाम की भूमिका और अंत समय में अंतिम परीक्षण की प्रक्रिया।
1798 में उलाई नदी के दर्शन की मुहर खुलने पर जो ज्ञान में वृद्धि हुई, उसने एक परीक्षण प्रक्रिया को जन्म दिया जो 1844 में आधी रात की पुकार के आंदोलन में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। अंतिम दिनों की आधी रात की पुकार जो अब खोली जा रही है, उस इतिहास द्वारा ही निरूपित की गई है और उस इतिहास के वही परीक्षात्मक सत्य शामिल करती है, क्योंकि आधी रात की पुकार का जो संदेश अब खोला जा रहा है वो मिलर के रत्नों की पुनर्स्थापना। हिस
जिन सत्यों को हमने 1841, 42 और 44 में ग्रहण किया था, उनका अब अध्ययन किया जाना और उनका प्रचार किया जाना है। पहले, दूसरे और तीसरे स्वर्गदूतों के संदेश भविष्य में ऊंचे शब्द से सुनाए जाएंगे। वे गंभीर दृढ़ निश्चय के साथ और आत्मा की सामर्थ्य में दिए जाएंगे। मैन्युस्क्रिप्ट रिलीजेस, वॉल्यूम 15, 371।
हमारे समय की आधी रात की पुकार के भविष्यवाणी संदेश का मुख्य विषय तीसरी विपत्ति के रूप में इस्लाम की भूमिका है। इस्लाम की तीनों विपत्तियाँ हब्बक्कूक की दो पट्टिकाओं पर दर्शाई गई हैं। अंतिम दिनों की आधी रात की पुकार का संदेश 18 जुलाई 2020 की निराशा में तब खुलना शुरू हुआ जब अंतिम दिनों का विलंब का समय आ पहुंचा। जैसे मिलराइट इतिहास की आधी रात की पुकार का संदेश था, वैसे ही अंतिम दिनों का संदेश क्रमशः विकसित होता है, जब तक कि वो एक्सेटर कैंप मीटिंग द्वारा निरूपित बिंदु तक नहीं पहुंचाता। उस समय कुमारियों के पास या तो तेल होगा या नहीं होगा। यशाया की वो हाय की घोषणा जो यरूशलेम की प्रजा पर शासन करने वाले, उपहास करने वाले पुरुषों पर है, ये बताती है कि एप्राम के मध्यपाइयों पे लिए दर्शन एक मुहरबंद पुस्तक के नामियम हो गया है। यशाया के इस खंड में शैतानी प्रतीक को ईश्वरीय प्रतीक में बदलने के कार्य को, जैसा कि एडवेंटवाद के इतिहास में किया गया, कुंभार की मिट्टी के समान आंका जाना है। वो कार्य था द डेली की परिभाषा को मसीह के प्रतीक के रूप में स्थापित करना, जबकि वो शैतान का प्रतीक है। जब दानियल ने तमाश शब्द को मूर्ति पूजा के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया, तो उसने उस शब्द को प्रतीकात्मक उद्देश्य से चुना, क्योंकि उस शब्द का अर्थ निरंतर है। तीन शक्तियां हैं जो संसार को आर्मगेडन की ओर ले जाती हैं, और उन तीन शक्तियों में पहली है अजगर, पैगनवाद। अजगर ने स्वर में परमेश्वर के विरुद्ध अपना युद्ध आरंभ किया। अजगर उस युद्ध को हजार वर्षीय सहस्राब्दी के अंत तक जारी रखता है, जब अंततः वो नष्ट कर दिया जाता है।
और जब हजार वर्ष पूरे हो जाएंगे तो शैतान को उसकी कैद से छोड़ दिया जाएगा और वो पृथ्वी के चारों कोनों में रहने वाली जातियों, गोग और मागोग को धोखा देने निकल जाएगा, ताकि उन्हें युद्ध के लिए इकट्ठा करे, जिनकी संख्या समुद्र की रेत के समान है, और वे पृथ्वी के विस्तार पर चढ़ आए और पवित्र लोगों की छावनी और उस प्रिय नगर को चारों ओर से घेर लिया, और स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से आग उतरी और उन्हें भस्म कर दिया। और जो शैतान उन्हें धोखा देने वाला था, उसे आग और गंधक की झील में डाल दिया गया, जहाँ पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता हैं, और वे दिन रात युगानुयुग यातना पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 20:7-10।
वो पशु पोप का पद जो संसार को अर्मगेदोन तक ले जाने वाली तीन शक्तियों में दूसरी है, और झूठा भविष्यद्वक्ता संयुक्त राज्य अमेरिका जो उन तीन शक्तियों में तीसरी है, दोनों क्रूस के बाद के इतिहास में प्रकट हुए और दोनों मसीह के दूसरे आगमन पर नष्ट कर दिए जाते हैं।
और उस पशु को पकड़ा गया और उसके साथ वो झूठा भविष्यद्वक्ता भी, जिसने उसके सामने चमत्कार किए, जिनके द्वारा उसने उन लोगों को धोखा दिया जिन्होंने पशु का चिन्ह ग्रहण किया था और जो उसकी प्रतिमा की पूजा करते थे। ये दोनों जीवित ही गंधक से जलती आग की झील में डाल दिए गए। प्रकाशित वाक्य 19:20।
जब दानियल ने हिब्रू शब्द कंटिन्यूअल को मूर्ति पूजा शैतान के प्रतीक के रूप में चुना, तो उन्होंने ऐसा शब्द चुना जो ये बताता था कि परमेश्वर के विरुद्ध निरंतर लड़ने वाला शैतान ही है। अन्य दो शक्तियां परमेश्वर के विरुद्ध अपने युद्ध में केवल निर्धारित समयावधियों के लिए ही सक्रिय रहती हैं। तमिद कंटिन्यूअल शब्द का दानियल द्वारा चयन उद्देश्यपूर्ण और सटीक था। जैसे जैसे यशाया हम को उन पर विपत्ति का वर्णन, जिन पर प्रभु ने गहरी नींद की आत्मा उंडेल दी और उनकी आंखें मूंद दी, अध्याय 28 से आगे बढ़ते हुए अध्याय 30 तक पहुंचता है। वो लिखता है,
अब जा, इसे उनके सामने एक पट्टिका पर लिख और इसे एक पुस्तक में दर्ज कर, ताकि ये आने वाले समय के लिए सदा सर्वदा बना रहे कि ये एक विद्रोही प्रजा है, झूठे बच्चे, ऐसे बच्चे जो प्रभु की व्यवस्था सुनना नहीं चाहते, जो दृष्टाओं से कहते हैं मत देखो और भविष्यद्वक्ताओं से हमारे लिए ठीक बातें की भविष्यवाणी मत करो, हमें मन भावनी बातें कहो, छल की भविष्यवाणी करो। मार्ग से हट जाओ, पथ से किनारे हो जाओ, इज़राइल के पवित्र को हमारे सामने से दूर कर दो। इस कारण इज़राइल का पवित्र यों कहता है, क्योंकि तुमने इस वचन को तुच्छ जाना और अत्याचार और कुटिलता पर भरोसा रखा और उसी पर टिके रहे, इसलिए ये अधर्म तुम्हारे लिए गिरने को तैयार दरार के समान होगा, ऊंची दीवार में निकले हुए उभार के समान, जिसका टूटना अचानक एक ही क्षण में आ पड़ता है, और वो इसे वैसे तोड़ेगा जैसे कुम्हार के पात्र को टुकड़े टुकड़े किया जाता है, वो नहीं बख्शेगा, यहां तक कि उसके फटने पर ऐसा एक भी खप्पर न मिलेगा जिससे चूल्हे से आग उठाई जाए या कुएं से पानी निकाला जाए। क्योंकि प्रभु परमेश्वर इज़राइल का पवित्र यों कहता है, लौटने और विश्राम में तुम्हारा उद्धार होगा, शांतता और भरोसे में तुम्हारी शक्ति होगी, पर तुमने नहीं चाहा। यशाया 30:8-15।
जो पट्टिका लिखी गई है वो हबकूक अध्याय 2 की पट्टिकाएं हैं, जिन्हें इस प्रकार बनाया गया था कि जो उन्हें पढ़े वो दौड़े और संदेश फैलाए। जिस पुस्तक ने उस पट्टिका का उल्लेख किया वो हबकूक है। हबकूक की पुस्तक की वो पट्टिका एक परीक्षण प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है, जो विद्रोही लोग, झूठे बच्चे, ऐसे बच्चे जो प्रभु की व्यवस्था सुनना नहीं चाहते को प्रकट करती है। विद्रोही लोग जो सुनने से इनकार करते हैं, वही यिर्मयाह में वे हैं जो प्रहरी के नरसिंगे की ध्वनि सुनने से इनकार करते हैं।
साथ ही मैंने तुम्हारे ऊपर पहरेदार नियुक्त किए और कहा, नरसिंगे की ध्वनि पर ध्यान दो, पर उन्होंने कहा, हम ध्यान नहीं देंगे। यिर्मयाह 6:17।
विद्रोही वे हैं जो यशायाह के इतिहास में और मसीह के इतिहास में भी सुनना नहीं चाहते थे।
और उसने कहा, जा और इस प्रजा से कह, तुम सुनते तो हो पर समझते नहीं, देखते तो हो पर पहचानते नहीं। इस प्रजा का हृदय मोटा कर, उनके कान भारी कर और उनकी आंखें बंद कर दे, कहीं ऐसा न हो कि वे अपनी आंखों से देखें, अपने कानों से सुने, अपने हृदय से समझें और लौट आएं और चंगे हो जाएं। यशाया 6:9-10।
यशायाह के बहरे विद्रोही सुन तो सकते हैं पर वे सुनते नहीं, और सुनने से उनका इनकार ये बताता है कि वे समझते नहीं। ये दानियेल के दुष्ट है जो मत्ती की मूर्ख कुवारियां भी है, जो हबक्कूक की पुस्तक में उल्लिखित तालिका पर प्रस्तुत ज्ञान की वृद्धि को नहीं समझते। यदि यशायाह के बेरे विद्रोही सुने तो वे परिवर्तित और चंगे किए जा सकते हैं, पर उनका हृदय मोटा हो गया है, इसलिए वे आधी रात की पुकार का संदेश समझ नहीं सकते। यीशु ने बेरे विद्रोहियों के बारे में दूसरी गवाही दी।
तब चेले पास आकर उससे कहने लगे, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर देकर उनसे कहा, क्योंकि स्वर्ग के राज्य के भेदों को जानना तुम्हें दिया गया है, परंतु उन्हें नहीं दिया गया। क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुतायत होगी, परंतु जिसके पास नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। इसलिए मैं उनसे दृष्टांतों में बातें करता हूँ, क्योंकि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और न समझते हैं, और उनमें यशाया की ये भविष्यद्वाणी पूरी होती है जो कहती है, तुम सुन सुनकर भी नहीं समझोगे और देखते देखते भी नहीं पहचानोगे, क्योंकि इस लोगों का हृदय मोटा हो गया है और उनके कान सुनने में सुस्त हो गए हैं और अपनी आंखें उन्होंने मूंद ली हैं, कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और अपने हृदय से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा कर दूँ। परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देखती है, और तुम्हारे कान क्योंकि वे सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं और धर्मी जनों ने उन बातों को देखने की इच्छा की जो तुम देखते हो, पर उन्होंने नहीं देखी, और उन बातों को सुनने की भी इच्छा की जो तुम सुनते हो, पर उन्होंने नहीं सुनी। मत्ती 13:10-17।
बुद्धिमान दृष्टांतों के रहस्य को समझते हैं, जो पंक्ति दर पंक्ति प्रस्तुत किया गया सत्य है। बुद्धिमान धन्य है, क्योंकि वे देखते और सुनते हैं। और बुद्धिमान और धन्य दोनों का प्रतिनिधित्व दानियेल के 12वें अध्याय में किया गया है। बुद्धिमान वे है जो अपने हृदय से ज्ञान की वृद्धि को समझते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व हबक्कुक की पुस्तक में उल्लिखित तालिका द्वारा किया गया है। और धन्य वे है जो प्रतीक्षा करते हैं।
और उसने कहा, दानियेल तू अपनी राह चला जा, क्योंकि ये वचन अंतकाल तक बंद और मुहर बंद है। बहुतों को शुद्ध किया जाएगा, श्वेत बनाया जाएगा और परखा जाएगा, परंतु दुष्ट दुष्टता ही करेंगे, और दुष्टों में से कोई न समझेगा, परंतु बुद्धिमान समझेंगे। और जिस समय से नित्य बलिदान हटाया जाएगा और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु स्थापित की जाएगी, उस समय से 1290 दिन होंगे। धन्य है वो जो प्रतीक्षा करता है और 1335 दिनों तक पहुँचता है। दानियेल 12:9-13।
मिलर राइट्स ने ठीक ठीक समझा कि 1335 दिन तब शुरू हुए जब मूर्ति पूजा द डेली सन 508 तक हटा दी गई। 1845 में प्रतीक्षा कर रहे लोगों को आशीर्वाद का वादा किया गया था। इस अंश में खमिथ शब्द का अर्थ छूता है होता है। 1845 का वर्ष जब समाप्त हुआ, तब उसने 1845 के वर्ष को छुआ। जब 1845 का वर्ष समाप्त हुआ, तो हबक्कूक का ठहरने का समय आ गया, और तालिकाओं का उल्लेख करने वाली पुस्तक में दिए गए आदेश के अनुसार प्रतीक्षा करने वालों पर आशीर्वाद घोषित किया गया। हबक्कूक की पुस्तक ने दर्शन के लिए प्रतीक्षा करने की आज्ञा दी। दानियेल एक सत्तात वचातान के इतिहास की पहचान करता है, अंत का समय जब उसकी पुस्तक की मोहर खोली गई और तब एक त्रिचरणीय परख की प्रक्रिया उत्पन्न हुई। शुद्ध किए गए, उजले किए गए और परखे गए। वो प्रक्रिया 7 गर्जनाओं के गुप्त इतिहास के प्रकटीकरण में अपने निष्कर्ष पर पहुंची। वो गुप्त इतिहास सत्य के 3 मार्ग चिन्ह हैं, जिन्हें पहली निराशा, मध्यरात्रि के आह्वान का संदेश और महान निराशा द्वारा दर्शाया गया है। पहली निराशा तक पहुंचने का आशीर्वाद सत्तात वचातान के इतिहास के अंत में एक त्रिचरणीय परख की प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। 77वीं नैनताल से लेकर 1844 की महान निराशा तक का इतिहास, 4997 से लेकर शीघ्र आने वाले रविवार के कानून तक के इतिहास का प्रतिरूप है, जो उस दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं जो पहली निराशा के समय ठहरने लगा, उनके लिए आशीर्वाद का वादा है। दानियेल 12 के बुद्धिमान वे हैं जो धन्य हैं और जो प्रतीक्षा करते हैं, दुष्ट वे हैं जो अपने हृदय से सुनते नहीं और जो देखते नहीं। मिलराइट आंदोलन का संपूर्ण अनुभव दानियेल की 4 आयतों में संक्षेप किया गया है, और वे आयतें 1,44,000 की मुहरबंदी कथरेकी के इतिहास का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। उन 4 पदों में प्रस्तुत पवित्र इतिहास उस समझ पर आधारित है कि ज्ञान की वृद्धि हुई, एक जो हबक्कूक की तालिकाओं पर दर्शाई गई और दूसरी जिसकी पहचान यीशु ने रेखा पर रेखा की विधि से सिखाते समय कराई। उन्होंने बुद्धिमानों को भविष्यवाणी का रहस्य समझाने के लिए दृष्टांत पर दृष्टांत प्रस्तुत किए। दानियेल अध्याय 12 में दुष्ट नहीं समझते, और 2 थिसलुनीकियों अध्याय 2 में उनकी इस समझ की कमी को सत्य से घृणा के रूप में दर्शाया गया है, जो प्रबल भ्रम लाती है। पौलुस के पत्र में जिस सत्य से दुष्ट प्रेम नहीं रखते, वो नित्य था, और दानियेल के उन 4 पदों में जो विशेष रूप से पहचाना गया भविष्य सूचक सत्य है, वो भी नित्य ही है। यीशु ने शिष्यों से कहा कि वे धन्य हैं, और ऐसा करते हुए वह उनकी तुलना यशायाह में उन लोगों से कर रहा था जिन्होंने देखना और सुनना अस्वीकार किया, ताकि वे परिवर्तित हो सकें। दानियेल 12 में जो धन्य हैं, वे वही हैं जो प्रतीक्षा करते हैं। दानियेल के 12वें अध्याय के 4 पद उन पदों की पूर्ति मिलराइटों के इतिहास में यशायाह में उस वर्ग के साथ किया गया भेद जिसने सुनना और देखना अस्वीकार किया, और मसीह द्वारा उन्हीं 2 वर्गों के बीच किया गया वही भेद। ये सब 18 जुलाई 2020 को आई सात गर्जनाओं के छिपे हुए इतिहास की ओर संकेत करते हैं। मिलराइटों के इतिहास की अंतिम परीक्षा की प्रक्रिया, जो पहली निराशा पर शुरू हुई थी, अब दोहराई जा रही है। कुछ देखेंगे और अन्य देखने से इनकार करेंगे।
1840 to 1844 से दिए गए सभी संदेशों को अब प्रभावशाली बनाया जाना है, क्योंकि बहुत से लोग अपना मार्ग बोध खो चुके हैं। ये संदेश सब कलीसियाओं तक पहुंचने हैं। मसीह ने कहा, धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देखती हैं, और तुम्हारे कान क्योंकि वे सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं और धर्मी मनुष्यों ने उन बातों को देखने की अभिलाषा की है जिन्हें तुम देखते हो, पर उन्हें नहीं देखा, और उन बातों को सुनने की अभिलाषा की है जिन्हें तुम सुनते हो, पर उन्हें नहीं सुना। मत्ती 13:16-17। धन्य है वे आंखें जिन्होंने 1843 और 1844 में दिखाई गई बातों को देखा। संदेश दे दिया गया है, और इस संदेश को दोहराने में कोई विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय के चिन्ह पूरे हो रहे हैं। अंतिम कार्य अवश्य किया जाना है। थोड़े समय में एक महान कार्य किया जाएगा। परमेश्वर की नियुक्ति से शीघ्र ही एक संदेश दिया जाएगा जो बढ़कर प्रबल पुकार बन जाएगा। तब दानियेल अपने भाग में खड़ा होगा अपनी साक्षी देने के लिए। मैन्युस्क्रिप्ट रिलीजेस Vol. 21, 473।
विलियम मिलर को स्वर्ग दूतों ने यह समझने के लिए मार्गदर्शन दिया कि द डेली मूर्ति पूजक रोम का एक प्रतीक था। सिस्टर व्हाइट ने सीधे तौर पर पुष्टि की कि उस समझ में वो सही थे। वो समझ जो हबकूक की पुस्तक में उल्लिखित तालिकाओं पर प्रदर्शित की गई थी, आने वाले समय के लिए है। उस पुस्तक की मुहर खुलना एक विद्रोही झूठ बोलने वाले बच्चे को प्रकट करता है। बच्चे अंतिम पीढ़ी का एक प्रतीक है, इसलिए यशायाह के खंड में आने वाला समय विशेष रूप से अन्वेषण न्याय के अंतिम दिनों के रूप में चिह्नित है। यशायाह कहता है कि झूठे बच्चे उस पुस्तक में उल्लिखित पट्टिका पर प्रस्तुत किए गए भविष्यवाणी के संदेश को अस्वीकार करेंगे, क्योंकि वे दृष्टाओं से कहते हैं मत देखो, और भविष्यद्वक्ताओं से हमारे लिए सही बातें की भविष्यवाणी ना करो, हमसे मनभावनी बातें कहो, धोखे की भविष्यवाणी करो। 1830 में लाओदिकियाई एडवेंटिज्म ने झूठे बच्चों के अनुरोध को पूरा करने की एक बढ़ती हुई प्रक्रिया शुरू की। उस काम को यशाया मिलेराइट नींवों के पुराने पथों को अस्वीकार करना बताता है, क्योंकि वे कहते थे मार्ग से हट जाओ, पथ से किनारे हो जाओ, इसराइल के पवित्र जन को हमारे सामने से दूर कर दो। वो मार्ग यिर्मयाह के पुराने पथ ही हैं।
यहोवा यों कहता है, मार्गों पर खड़े हो और देखो, और प्राचीन पथों के विषय में पूछो कि भला मार्ग कौन सा है, और उसी पर चलो, तब तुम अपने प्राणों के लिए विश्राम पाओगे। परंतु उन्होंने कहा, हम उस पर नहीं चलेंगे। यिर्मयाह 6:16।
झूठे बालकों द्वारा यिर्मयाह के पुराने मार्गों का अस्वीकार मध्यरात्रि की पुकार के संदेश का ही अस्वीकार है, जहां विश्राम पासा जाना है, और वही यशाया में वो विश्राम और ताजगी है जिसे वे सुनना नहीं चाहते थे, और वही अंतिम वर्षा के संदेश की ताजगी भी है। वो संदेश मध्यरात्रि की पुकार का संदेश है, जो मिलरवादियों के इतिहास में निरूपित है और एक पुस्तक में उल्लिखित पट्टिकाओं पर चित्रित है। मध्यरात्रि की पुकार के संदेश का झूठे बालकों द्वारा अस्वीकार इस इच्छा से प्रकट होता है कि वे इसराइल के पवित्र को अपने सामने से दूर कर दिए जाने की मांग करते हैं। एलिजा व्हाइट का पहला दर्शन, जिसे अल्फा और ओमेगा निश्चय ही अंत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयोग करेंगे, धर्मियों के मार्ग का पहचान करता है, उसके आरंभ में प्रकाश को चिह्नित करता है, और ये बताता है कि बुद्धिमानों को मार्ग के अंत तक कौन ले चलता है।
मार्ग के आरंभ में उनके पीछे एक उज्ज्वल ज्योति स्थापित की गई थी, जिसके विषय में एक स्वर्गदूत ने मुझे बताया कि वो मध्यरात्रि की पुकार थी। ये ज्योति संपूर्ण मार्ग पर प्रकाश करती थी और उनके पांवों के लिए उजाला देती थी, ताकि वे ठोकर न खाएं। यदि वे अपनी आंखें यीशु पर, जो उनके बिल्कुल सामने था और उन्हें नगर की ओर ले जा रहा था, टिकाए रखते, तो वे सुरक्षित रहते। परंतु जल्द ही कुछ थक गए और कहने लगे कि नगर बहुत दूर है, और वे अपेक्षा करते थे कि वे इससे पहले ही उसमें प्रवेश कर चुके होते। तब यीशु अपनी महिमामय दाहिनी भुजा उठाकर उन्हें प्रोत्साहित करता, और उसकी भुजा से एक प्रकाश निकलता जो एडवेंट दल के ऊपर लहराता, और वे पुकार उठते, हल्लेलुया। कुछ अन्य ने उतावलेपन में अपने पीछे की ज्योति का इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें इतनी दूर तक ले जाने वाला परमेश्वर नहीं था। उनके पीछे की ज्योति बुझ गई, उनके पांव पूर्ण अंधकार में पड़ गए और वे ठोकर खाकर लक्ष्य और यीशु दोनों को दृष्टि से खो बैठे और मार्ग से गिरकर नीचे स्थित अंधकारमय और दुष्ट संसार में जा पड़े। एलन जी वाइट के ईसाई अनुभव और शिक्षाएं 57।
वो आरंभ में भी और अंत में भी आधी रात की पुकार का प्रकाश था। वो यीशु इसराइल का पवित्र ही था जिसे वे अपने सामने से हटाना चाहते थे। यीशु की महिमामय दाहिनी भुजा से निकलने वाला प्रकाश पुस्तक में उल्लिखित तालिकाओं पर दर्शाई गई आधी रात की पुकार का ही प्रकाश था। झूठे बच्चों द्वारा मसीह की आधी रात की पुकार के संदेश और उस मार्ग का जिस पर उन्हें चलना था अस्वीकार कर देने से जब वे मार्ग से गिर पड़े तो उन पर परमेश्वर का न्याय आ पड़ा। जो ऊंची दीवार अचानक टूट जाती है वो कलीसिया और राज्य के पृथक्करण की वही दीवार है जो शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय नष्ट कर दी जाएगी। वो न्याय अचानक एक ही पल में आता है और वो कुम्हार के पात्र के टूटने के समान होगा जो टुकड़ों में चकनाचूर हो जाता है। ये वही न्याय है जो दैनिक के शैतानी प्रतीक को उलट देने और उसे मसीह के प्रतीक के रूप में पहचानने से संबंधित है।
निश्चय ही तुम्हारा उलट पलट करना कुम्हार की मिट्टी के समान समझा जाएगा, क्योंकि क्या कृति अपने बनाने वाले के विषय में कहेगी उसने मुझे नहीं बनाया, या क्या गढ़ी हुई वस्तु अपने गढ़ने वाले के विषय में कहेगी उसमें बुद्धि नहीं थी। यशाया 29:4-16।
दैनिक वह भविष्य सूचक सत्य है जो दानियल के 12वें अध्याय में उन चार पदों को आपस में जोड़ता है जो दुष्टों और बुद्धिमानों के बीच का भेद बताते हैं। दैनिक वही सत्य है जिससे 2 थिस्सलुनीकियों में वर्णित प्रबल भ्रम प्राप्त करने वाले घृणा करते हैं। दैनिक झूठी संतान की उस चाह का प्रतिनिधित्व करता है कि इसराइल का पवित्र उनके मार्ग से हट जाए और उनकी सजा कुम्हार के पात्र के टूटने से दर्शाई गई है, और जो शेष बचता है वह मूर्ख कुंवारियों की खोई हुई दशा का चित्र है, क्योंकि वहां कुम्हार के चकनाचूर पात्र के टूटे और बचे हुए टुकड़ों में न पाया जाएगा चूल्हे से आग लेने के लिए एक ठीकरा या गड्ढे में से पानी निकालने के लिए। आग और जल दोनों ही पवित्र आत्मा के प्रतीक हैं, जैसे कि 10 कुमारियों के दृष्टांत में तेल है। जब आधी रात की पुकार एक ही क्षण में अचानक आती है, जैसा कि अगस्त 1844 में एक्सेटर की कैंप मीटिंग में हुआ था, तो झूठी संतान के लिए कोई तेल जल या अग्नि पाना असंभव होगा। पहली निराशा के बाद उन्हें लौट आने के लिए बुलाया गया था, जैसा कि यिर्मयाह को भी बुलाया गया था, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया।
तेरे वचन मिल गए और मैंने उन्हें खा लिया, और तेरा वचन मेरे लिए मेरे हृदय का हर्ष और आनंद बन गया, क्योंकि मैं तेरे नाम से कहलाता हूँ हे सेनाओं के प्रभु परमेश्वर। मैं ठट्ठा करने वालों की सभा में नहीं बैठा, न ही उनके साथ आनंद मनाया। तेरे हाथ के कारण मैं अकेला बैठा, क्योंकि तूने मुझे आक्रोश से भर दिया है। मेरा दर्द सदा का क्यों है और मेरा घाव असाध्य क्यों है जो भरना नहीं चाहता? क्या तू मेरे लिए सर्वथा झूठा और ऐसे जल के समान होगा जो सूख जाते हैं? इसलिए प्रभु यूं कहता है, यदि तू लौट आए तो मैं तुझे फिर ले आऊँगा और तू मेरे सामने खड़ा होगा, और यदि तू निकृष्ट में से उत्तम को छांट निकाले तो तू मेरे मुख के समान होगा। वे तेरी ओर लौटें परंतु तू उनकी ओर न लौटना, और मैं तुझे इस प्रजा के लिए एक दृढ़ पीतल की दीवार बनाऊंगा। वे तेरे विरुद्ध लड़ेंगे परंतु तुझ पर विजय ना पाएंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और छुड़ाने के लिए तेरे साथ हूँ, प्रभु कहता है। और मैं तुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ा दूंगा और भयानक लोगों के हाथ से तेरा उद्धार करूंगा। यिर्मयाह 15:16-21।
यिर्मयाह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो पहली निराशा के बाद लौट आए। वे जो उत्तम को निकृष्ट से अलग करने के कार्य में लगे ताकि प्रभु के समक्ष खड़े हों और प्रभु के मुख के समान हों, वे वही हैं जिनका दानियल अध्याय 9 में प्रतिनिधित्व करता है, जो अपनी तितर बितर दशा को समझते हैं और उसके बाद लय व्यवस्था अध्याय 26 की प्रार्थना करते हैं। वे वही हैं जिनका प्रतिनिधित्व दानियल, यिर्मयाह
और हबक्कुक के पहरेदार करते हैं, जिन्हें झूठे बालकों के विपरीत दिखाया गया है। झूठे बालकों को इसराइल के पवित्र ने भी संबोधित किया जब उसने कहा, लौट आने और विश्राम करने से तुम बचाए जाओगे, शांत रहने और भरोसे से तुम्हारी शक्ति होगी, पर तुमने न माना। मिलर के रत्न वे सत्य हैं जो हबक्कुक की तालिकाओं पर दर्शाए गए हैं, जो उस आधी रात की पुकार के संदेश की परीक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उपासकों के दो वर्ग उत्पन्न करता है। उन रत्नों के विरुद्ध प्रकट होने वाले विद्रोह का प्रतीक दैनिक है। दैनिक के विषय में मिलर की समझ सही थी, पर उनकी समझ उस इतिहास से सीमित थी जिसमें वे जी रहे थे, और वे रत्न जिन्हें वे अपने कमरे के बीचों बीच मेज पर रखा करते थे अब उस समय की तुलना में 10 गुना अधिक चमक रहे हैं जब मिलर ने उन्हें पहली बार अपनी मेज पर रखा था। अब वे एक बड़े संदूक में हैं, क्योंकि अब वो संदूक केवल बाइबल का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता जैसा कि मिलर के समय करता था, बल्कि अब वो बाइबल और भविष्यवाणी की आत्मा दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। इन्हीं दो गवाहों से अंतिम दिनों में परख का प्रकाश उत्पन्न होता है, और अंतिम दिनों में संघर्ष का मुख्य रण क्षेत्र भी इन्हीं दो गवाहों के इर्द गिर्द बनता है। मिलर ने ये लड़ाई देखी क्योंकि अपने स्वप्न में उन्होंने देखा कि वे लोग उसकी पेटी बाइबल उठा ले गए और उसे फाड़ डाला। यूहन्ना, जो अंतिम दिनों के बुद्धिमान का प्रतिनिधित्व करते हैं, परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण उस द्वीप पर था जिसका नाम पटमोस कहलाता है। यूहन्ना को बाइबल और एलन वाइट की रचनाओं दोनों के संदेश पर विश्वास करने के कारण सताया जा रहा था। हम अगले लेख में उन सत्यों पर विचार जारी रखेंगे जो उलाई नदी की उस दृष्टि द्वारा प्रस्तुत हैं जिसकी मुहर 1758 में खोली गई थी।
भविष्य के लिए हमें किसी बात से भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि हम उस मार्ग को भूल जाएं जिससे प्रभु ने हमारी अगुवाई की है, और हमारे पूर्व इतिहास में उसकी शिक्षा को। लाइफ स्केचेस 1914।